हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो अभी हम श्री गिरिराज गोवर्धन के पास बैठे हुए हैं। सब लोगों को इसकी कथा पता ही है, लेकिन संक्षेप में बताना जरूरी है कि इंद्र को बड़ा गर्व हो गया था और भगवान को भूल गया था। वो जब गर्व होता है ना, तो भगवान को हम भूल जाते हैं। जब नम्रता होती है तो भगवान की याद आती है। भगवान गर्व में टिकते नहीं है, नम्रता में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इंद्र ने सोचा कि ये 7 साल का बालक है, इसने मेरी पूजा बंद करवाई। हर साल मेरी पूजा होती थी और मैं पूजा करता था, पूजा लेने के बाद में इनको वर्षा देता था। ये बालक ने आकर नटखट बातें करी और नंद बाबा ने उनकी बात मानकर मेरी जैसे देवता की, देवेंद्र की पूजा बंद करवाई। आइए मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि मेरी पूजा बंद करने का परिणाम क्या होता है। 7 दिन 7 रात वर्षा करी उन्होंने और भगवान ने गोवर्धन को उठाया। कभी किसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आज आप लोगों को मालूम है, सब लोग को स्टोरी में क्या हुआ था, है ना। बच्चा भी बोल सकता है ना, जानकी क्या हुआ था वर्षा होने के बाद में? गोवर्धन को भगवान ने उठाया। देखो बच्चा भी जानता है, लेकिन उस वक्त की सोचो आप, जिस वक्त भगवान वहां खड़े हैं और घनघोर मूसलधार वर्षा हो रही है ना। उस समय किसी को पता नहीं था कि भी क्या होगा और हम लोग कैसे बचेंगे और ये अब नटखट बालक क्या करेगा। अभी इसके कहने से हम लोगों ने पूजा तो बंद करवाई, अभी क्या करेगा। तो उसने कहा कि मैं ना ये गिरिराज पर्वत को उठाऊंगा। अभी जानकी देवी हमारी बैठी है यहाँ पर, वो अगर मम्मी को बोलती है मम्मी मैं वो पर्वत को उठाऊंगी, तो मम्मी क्या बोल गया, हाँ बहुत अच्छी बेटी मेरी, प्यारी बेटी, बहुत अच्छी बेटी है ना। लेकिन मन में जानती है मम्मी की ये उठा नहीं सकती है। वैसे सब लोगों को लगा कि ये बालक बोल रहा है छोटा सा, क्या उठाएगा। तो उसके फ्रेंड लोग बोले तू उठाएगा इसको? बोले हाँ उठाऊंगा। तो तू उठाएगा इसका प्रूफ क्या है, आओ दिखाता हूं आपको। ऐसे करके एक बड़ा, इतना बड़ा, हाँ बिग ब्रॉड ऐसा एक कंदम का पेड़ था, उसके पास में लेके गए। भगवान ने 7 साल के बालक के रूप में उस पेड़ को उखाड़ दिया पूरा, हाँ उखाड़ा और उसको ऐसा निचोड़ दिया पूरा, स्क्वीज कर दिया उसको, ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट। तो जब इतने बड़े पेड़ को पहले उखाड़ा नंबर वन, नंबर टू उसको ट्विस्ट किया, तो सब ग्वाल भाई बोले भा कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, हाँ लगता है तुम उठा पाओगे। उसके बाद में भगवान चले गए हैं और उधर एक गांव है, उसका नाम है पेठा, पेठा गांव है, पेठा गांव। उसका वैसा नाम क्या है, परम रासस्थली, उसका ऐसा नाम, आज का नाम पेठा है। तो पेठा गांव में भगवान जाते हैं और वहां से जमीन के अंदर गुफा में प्रवेश करते हैं। उसका नाम क्या है, प्रविष्ट गुफा। प्रविष्ट का मतलब क्या है, जिसके अंदर भगवान ने प्रवेश किया, इसका नाम पड़ा प्रविष्ट गुफा। उसके अंदर भगवान ने प्रवेश करके जमीन के अंदर गए, भगवान जमीन के नीचे गए और वहां से गोवर्धन को उठाया, बाएं हाथ से उठाया, फिर छोटी उंगली पर धारण किया, उसको छतरी की तरह पकड़ा भगवान ने। और इतना बड़ा, इतना घनघोर वर्षा हुआ, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुलाया और उसको आदेश दिया। बड़ी अद्भुत बात है, अच्छी तरह समझ लो। समझो आपके आपके मुंबई में कितनी वर्षा होती है ना, बहुत वर्षा होती है, कभी कभी पानी भरता है, आपका छतरी तो है लेकिन फिर भी आप इतने पानी में होते कि नहीं, क्योंकि छतरी में से पानी बाजू में गिर रहा है, लेकिन बाजू में गिर के जमा तो हो रहा है ना, मतलब जमीन पे पानी गिर रहा है कि नहीं, आप छतरी में क्या आया, खाली थोड़े से बाल बचेंगे, लेकिन बाल भी गीले हो जाते बाद में, छतरी के अंदर से वर्षा होती है कभी कभी। छतरी का फायदा क्या है? फायदा ना होने के बराबर है, खाली नीचे जितना गिल्ला है उतना ऊपर गिल्ला नहीं होता है, इतना ही फर्क होता है। भगवान की इच्छा थी कि एक भी बूंद पानी जमीन पर ना गिरे। छतरी तो मैंने उठा लिया गोवर्धन का, पानी साइड से गिर रहा है, लेकिन नीचे एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। तो चक्र को बुलाया, चक्र को बुला, इतनी जोर से यहां पर गोल गोल घूमना अपना पूरा शक्ति लेकर अग्नि की, कि जितना भी जल गिरेगा ना गोवर्धन के ऊपर से वो सब बाष्प होना चाहिए। तो चक्र जो ने इतनी इतना जोर से गोल गोल घुमा चक्र 7 दिन तक, कि जितना मूसलधार वर्षा हुआ जो गोवर्धन के ऊपर से नीचे गिरने वाला था वो सबको उसने बाप बना दिया, और जमीन पर पूरा सूखा का सूखा, एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरा। आप बोलेंगे क्या प्रभु जी, आप क्या सर, आप बेकार की फालतू बातें कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि कभी? वो हमारे दुनिया में नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान चाहते तो क्या नहीं हो सकता है। भगवान ने सारे पानी को बाष्प बना दिया और सारा पानी गिर गया गोवर्धन के ऊपर से, लेकिन जमीन पर नहीं गिरा, और जमीन वैसे के वैसे रह गई। इतना पानी गिराया, इतना पानी गिराया कि जो प्रलय काल में जब सृष्टि का नाश करने का समय होता है तब ये बादल को भेजते हैं इंद्र। उसका नाम क्या है बादल का नाम? संवर्तक बादल बोलते हैं उसको। वो उनका काम खाली उस टाइम पे होता है, तब बाकी आराम करते हैं वो। जब प्रलय का समय आता है ना नष्ट करने का, तभी उनको भेजते हैं। और पृथ्वी के ऊपर 1000 किलोमीटर तक पानी जमा होता है। अभी हम लोग इतना पानी जमा हो गया 4 फुट का, तो बोलते हैं हाफ सुस करते हैं हम लोग, डूब गए बोलते हैं, अरे कोई गटर में गिर गया, अरे कोई फिसल गया, कोई चोखों पर मर गया। कितना पानी में? 4 फुट पानी में। प्रलय काल में जब वर्षा होती है 100 साल तक वर्षा होती है, और उसमें 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी पर पानी जमा होता है। उसके बाद में 100 सूर्य प्रकट होते हैं और सारे पानी को क्या कहते हैं उसको, बाष्प कर देते हैं, इवेपोरेट। और उसके बाद में जब सब सूखा होता है तो वापस सृष्टि का निर्माण होता है। ये सब ब्रह्मा जी के रात में होता है। ब्रह्मा जी की रात समाप्त होती है तो ये सब वर्षा होके पानी उबाल के फेंक के समाप्त होता है, फिर दिन शुरू होता है, फिर वापस दिन में हमारा निर्माण होता है सब लोग का। तो ये संवर्तक बादल केवल उस समय काम आते हैं, तभी उनको भेजते हैं लोग इंद्र। तो वो संवर्तक बादल भी पूछ रहे हैं, महाराज प्रलय का समय तो नहीं है, आप हमको अभी क्यों भेज रहे हैं? बोलते कुछ प्रश्न पूछने का काम नहीं है, मेरा आदेश का पालन करो, मैं भी पीछे वज्र लेके आ रहा हूं, वज्र यानी थंडर बोल्ट लेके आ रहा हूं। और बेचारे 7 दिन और 7 रात तक वर्षा करते हैं। 7 दिन 7 रात में सारा पानी खलास हो जाता है, उनका टैंक खाली हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरता है, गोवर्धन पे गिरता है और सब इवेपोरेट हो जाता है। पीछे से इंद्र आते हैं, बोलते और बरसाओ। बोले महाराज कहां से बरसाओ, टैंक तो खाली हो गया। तो इंद्र जो है वज्र फेंकते हैं, उनका अस्त्र है ना वज्र, वो फेंकते हैं, वज्र भी एक जगह अटक जाता है, कुछ नहीं होता है उसका। उसके बाद में इंद्र की आंख खुलती है कि मैं ये जो खेल खेल रहा हूं, जिसके साथ खेल रहा हूं, वो भगवान है स्वयं, जो मेरे संवर्तक बादलों को पूरा बरसाने के बाद भी तस से मस नहीं हुए, उनका बाल भी बाका नहीं कर पाया मैं, एक पेड़ को भी गिरा नहीं पाया, एक पौधे को भी गिरा नहीं पाया, इतना वर्षा करने के बाद में ये चमत्कार कौन कर सकता है? मेरे भगवान ही कर सकते हैं। तो ये 7 साल का बालक नहीं है, ये भगवान है। बालक बनकर लीला कर रहा है, खेल खेल रहा है इधर, लेकिन मेरे भगवान है ये, और मैंने इनके साथ खिलवाड़ किया है, इनके लोगों को मारने का प्रयास किया है, इनके गांव को नष्ट करने का प्रयास किया है। अरे बाप रे, इतना अपराध मैंने किया है, अभी तो माफी मांगनी चाहिए। तो भगवान खड़े हैं, कौन से हाथ में पकड़ के खड़े हैं? लेफ्ट की राइट में, मेरे लेफ्ट हैंड में माइक्रोफोन है, इसलिए मैंने राइट ऊपर किया है। इसका मतलब उन्होंने राइट में नहीं किया था, उन्होंने लेफ्ट में किया था। अभी आप मुझे बताओ कि लेफ्ट में करने का कारण क्या है, बताओ, राइट में क्यों नहीं किया? हाँ, एक कारण है कि राइट से बांसुरी बजा रहे थे, वो भी सही है, लेकिन लेफ्ट में बांसुरी बजाना मुमकिन नहीं था क्या उनको? हाँ, बांसुरी बजाना जो एक्सपर्ट है वो लेफ्ट से बजा सकता है। हाँ हाँ, इसका कारण यह है कि आप सब लोग जानते हैं जो राइट हैंड होते हैं, राइट हैंड वाले क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंडेड, उनका लेफ्ट हैंड का जो लास्ट उंगली है वो शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। देखो आप ट्राई करके देखो, इससे कुछ उठाने का प्रयास करो। राइट हैंड के ये उंगली से आप कुछ उठा सकते हो, लेकिन लेफ्ट हैंड से वो भी मुमकिन नहीं होता है। तो कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड का लास्ट उंगली शरीर के सबसे कमजोर हिस्से में से एक है। तो इंद्र का सबसे बड़ा बल जो था संवर्तक बादल का, वो भगवान ने अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से परास्त कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए उन्होंने उसको लेफ्ट हैंड से उठाया, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा सबसे बड़ा पावर जो है ना, मेरे लेफ्ट उंगली के छोटे उंगली के बराबर भी नहीं है। तब जब ध्यान में आया तो पश्चाताप किया, नीचे उतर के आया तो भगवान ऐसे खड़े थे और दाहिने हाथ से बांसुरी बजा रहे थे। तो वो भगवान जहां देख रहे थे वहां से आया, तो भगवान ने दूसरी तरफ देखा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निगलेक्ट। हाँ, किसी आदमी को मिलकर डांटना फिर भी एक सम्मान की बात है, क्योंकि आपने कम से कम बात तो किया। लेकिन कोई आदमी आया और उसको देख के हमने उधर देखा, मतलब क्या, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, आप मेरे लिए है ही नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो वो इधर देखा भगवान ने, तो वो उधर से आया भगवान की नजर में कैच करने के लिए। तो जैसे उधर से आया तो भगवान ने इधर देखा, तब उसको समझ में आया कि भगवान देखने के मूड में नहीं है। तो डर गया वो सीधे अपने गुरु के पास गया। इंद्र के गुरु का नाम क्या है, सब लोग ने लिखना बंद कर दिया है ना, इंद्र के गुरु का नाम क्या है बताओ। इंद्र के गुरु का नाम है बृहस्पति, जिसके नाम से हम लोग गुरुवार बोलते हैं ना, गुरुवार, बृहस्पतिवार। वो बृहस्पति जी के पास गए तो उन्होंने बहुत डांटा इंद्र को, बोले तुम बहुत मूर्ख आदमी हो। किसको बोल रहे हैं, देवताओं के राजा को बोल रहे हैं, यू आर मैड मैन, यू आर फूल नंबर वन, आप जानते नहीं हो किसके साथ आपने खिलवाड़ किया है, ये स्वयं भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण है, ये आपका कुछ नहीं कोई अभी कर सकता है, इतना अपराध किया तुमने। तो ब्रह्मा के पास में गए तो ब्रह्मा ने कहा कि एक काम करो, अभी एक ही तुम्हारे पास उपाय है, फुल प्रूफ उपाय नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसमें कुछ हो सके तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा तो बिगड़ ही गया काम पूरा। बोला क्या उपाय है, मैं ट्राई करके देखता हूं। तो बोलते भगवान का जो भक्त है ना, उसके चरणों का सहारा ले लो, टेक शेल्टर ऑफ अ रियल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और वो डिवोटी अगर समझ गया, समझो दिल उसको आ गया, आपका ऊपर दया आ गई उसको, और वो अगर आपको लेकर भगवान के पास जाके आपकी सिफारिश करेगा ना, वसीला लगाएगा थोड़ा सा, तो शायद भगवान आपको, शायद, हाँ गारंटी नहीं है, शायद आपको माफ कर सकते हैं। तो ऊपर जो गया था ना बृहस्पति लोक में, वहां से वापस पृथ्वी पर लौट के आया, देखा भी किसके चरण में शरण ले लूं, गाय का शरण ले लिया, सुरभि गाय का। और गाय ने ऐसा नहीं बोला, समझो आप वो गाय होते तो गाय भी थे ना उसके अंदर, सब वर्षा के ऊपर गाय भी थे, बछड़े भी थे, ग्वाल बाल थे, सब ब्रजवासी भी थे। इतना तकलीफ तो आपने सहन कर लिया ना, अभी जिसने तकलीफ दिया वो आपके पास में आ रहा है और बोल रहा है कि सॉरी, यहां जरा माफ कर देना, तो आप लोग क्या बोलते, सोचो जरा क्या बोलते हैं उसको, आप सच बताओ। समझो आप वो गाय हो और आपको भी तकलीफ हुआ है वर्षा का, अपने बछड़े भी बहने वाले थे, बहुत दुख हुआ था, जीवन जाने का समय था, और जिसने ये सब वर्षा किया वो आपके पास बोल रहा है अभी थोड़ा सॉरी, हाँ माफ करो, तो क्या बोलेंगे उसको आप, कुछ नहीं बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे उसको, थैंक यू बोलेंगे अश्विनी, क्या बोलेंगे मैडम आप,
अभी अक्कल आया,
हाँ डांटेंगे नहीं कि नहीं आपको उसको, अरे बोलो ना, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, हाँ बोलेंगे तुम ही इतना वो, हाँ इतना वर्षा किया था, क्या समझते हो अपने आपको, बड़ा समझते हो अपने आपको, हमारे बच्चे को जलाते हो, बच्चे को वर्षा करते हो, भा देते हो, अभी माफे आंगने हो, चले जाओ यहां से, मुंह मत दिखाओ हमको, जाओ दफा हो जाओ यहां से, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग। लेकिन गाय ने ऐसा नहीं बोला, जैसे इंद्र शरण में आया तुरंत शरण दे दिया उसको, क्योंकि भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं, वो खुद के ऊपर हुआ अपराध भी सहन लेते हैं और जो शरण में आया उसको माफ कर देते। तो वो गाय जो है ना, सुरभि गाय, वो बिना क्रोध किए उसको लेकर भगवान के पास जाती है, और भगवान पहली बार उसकी ओर मुड़कर देखते हैं। इतनी बार कोशिश किया ना, तभी देखा नहीं था। जब गाय ने सिफारिश किया तो भगवान ने उसकी ओर देखा, तो गाय ने क्या बोला, भगवान ये इंद्र है, इसने वर्षा किया था, लेकिन अभी पश्चाताप कर रहा है, माफी चाहता है, आप इसको माफ कर दो। तब भगवान ने उसको माफ कर दिया है, वो बोला दोबारा ऐसी गलती मत करना, डांट दिया उसको। तो इंद्र को लगा अच्छा हुआ भगवान ने कम से कम माफ तो कर दिया, अभी भगवान को खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। अभी हम लोग कुछ गलती करते हैं तो क्या कैसे करते हैं, कहा जेवन बनू का लड्डू बनू का पाए छेपन दे का तुमसे, है ना। तो वैसे इंद्र ने बोला कि मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ, तो फिर भगवान ने बोला ठीक है कर सकते हो। तो इंद्र ने अपने सारे डेमी गॉड्स को बुलाया, वायु देव को बुलाया, हाँ गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ वाटर्स, गॉड ऑफ समुद्र, सबको बुलाया, बोला अपने अपने लोक से बेस्ट बेस्ट चीज लेके आओ। तो वरुण देव ने सिंहासन लेके आया, वायु देव ने छतरी लेके आया, इंद्र का जो है ना व्हीकल का नाम क्या बताओ, मतलब कौन, हाथी, हाथी लिखो, इंद्र का वाहन जो है उसको ऐरावत कहते हैं। ऐरावत की सुंड कितनी होती है, पांच, ऐरावत को पांच सुंड होती है, फाइव ट्रंक्स। ऐरावत को भेजा आकाश में, और स्वर्गलोक में होती है ना आकाश गंगा, उसका जल लेके पृथ्वी पर गोवर्धन के पास में कुंड बनाया, ऐरावत कुंड बनाया। अप्सराओं ने भी जल लाया स्वर्ग से, उसका भी कुंड बना, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, ऐसे बहुत सारे कुंड बनवाए गए। जहां पर हाथी का पैर पड़ा ना वहीं पर कुंड बनाया गया, ऐरावत कुंड। और सुरभि गाय को बुलाया और सुरभि गाय ने अपना दूध दिया, सुरभि गाय का दूध, आकाश गंगा का पानी, सिंहासन पर बिठाकर भगवान का इंद्र ने अभिषेक कराया। और जो अभिषेक करा के पानी और दूध इकट्ठा हुआ वो कहां पर जाके जमा हो गया, उसका नाम है गोविंद कुंड, वो इस पर्वत के उस तरफ है, जब परिक्रमा करेंगे आपको दर्शन होगा उस कुंड का। तो गोविंद कुंड में भगवान का अभिषेक किया हुआ दूध और जल इकट्ठा हुआ और उसको गोविंद कुंड नाम दिया गया। उस समय इंद्र ने घोषणा किया कि आज से आपका नाम गोविंद होगा। गोविंद का मतलब क्या है कोई जानता है, गोविंद के तीन मतलब होते हैं, आप लिखो। एक है गो का अर्थ होता है इंद्रिय, हमारे सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी गोविंद। एक है गो मतलब गाय, गाय के स्वामी, और एक है भूमि अर्थ गोविंद। तो इस तरह से भूमि के, गायों के और इंद्रियों के स्वामी गोविंद, जो इंद्रियों को हमारे संतुष्ट करते हैं, हम उनके इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, तो ऐसे गोविंद करके उनका नाम घोषित किया गया। अभिषेक करने के बाद राज्याभिषेक करके गोविंद नाम दिया गया, इसलिए कुंड का नाम भी पड़ा गोविंद। तो अभी हम लोग यहाँ पर जहाँ बैठे हैं वो गिरिराज जी हमारे सामने हैं, यहाँ पर बैठकर आपको ना भक्ति की मांग करनी चाहिए। जैसे राधा रानी है जहाँ से भक्ति मिल सकती है, ऐसे ये गोवर्धन जी है। ये गोवर्धन जी को राधा रानी ने और गोपियों ने स्वयं एक श्रेष्ठ भक्त के रूप में पुकारा है, हरिदास वर्य ऐसे करके पुकारा है। समझो आप MD हो गए, समझो तो एक आम आदमी आया बोलेगा डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑपरेशन, बहुत दवा अच्छी देते हैं, लेकिन एक MBBS डॉक्टर बोलेगा कि ये बहुत अच्छा MD है, तो आपका वैल्यू बढ़ता है कि कम होता है। एक आम आदमी बोलेगा अच्छा डॉक्टर ठीक है, लेकिन जब एक MBBS आदमी बोलेगा ये पांच MD में से ना ये MD बहुत अच्छा है, क्योंकि वो खुद MBBS है ना, वो जानता है वो किसको पहचानना उसको आता है बराबर से। वैसे गोपियां जो है ना वो भगवान की परम भक्त हैं, परम 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 भक्त हैं, और वो परम परम भक्त जो हैं वो कहती हैं कि गोवर्धन ये भगवान के दासों में से सबसे श्रेष्ठ दास है, हरिदास वर्य ऐसा, क्योंकि गोपी लोग उनका गौरव कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितने ऊंचे दर्जे के भक्त होंगे, इसलिए यहां पर भी हम भक्ति की मांग कर सकते हैं, प्रेम की मांग कर सकते हैं, और ये प्रेम के देने वाले हैं। इनकी परिक्रमा करने से इनके चरणों की सेवा होती है और प्रेम और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इनके सामने जो कुंड है वो राधा कुंड, श्याम कुंड है। जब एक बैल आया था ना राक्षस बनकर, उसका नाम क्या था, अरिष्टासुर, लिखो अरिष्टासुर, ये बैल के रूप में आया था। ये बांग्लादेश में निवास करता था पहले, बंग देश में, कंस ने जाकर उसको वहां जाके परास्त किया था और अपना दोस्त बना लिया था। तो कंस ने उसको भेज दिया, जाओ सब लोग जाके वापस नहीं आ रहे, तुम जाओ, तुम बड़े पराक्रमी हो। तो वो आता है तो भगवान उस बैल को मार देते हैं। भाई जब भगवान उसको बैल को मार देते, बड़ी लंबी कहानी है, आपको छोटे से बता रहा हूँ, बहुत सुंदर कहानी है। तो जब बैल को भगवान मार कर आते हैं तो राजा रानी और गोपियां बोलती हैं, हमसे बात नहीं करना आप। क्या कारण है उसका? एनी रीजन? गौ हत्या किया आपने। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उनको, अरे वो गौ हत्या ठीक है, लेकिन राक्षस था वो, था तो बैल, हाँ हमारा पूजनीय वंदनीय बैल है वो, लेकिन था राक्षस वो एक्चुअली, देखा ना आपने कैसे उसने आतंक मचा दिया था। वो कहते फिर भी कुछ भी बोलो आप, था तो बैल ही, और आपने बैल का अपराध किया है इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो भगवान को बड़ा दुख होता है कि आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर कुछ उपाय तो बताओ, इस पाप से मुक्त कैसे हो जाएं। तो वो कहते हैं कि जाओ दुनिया भर में जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थ में स्नान करके आ जाओ, मतलब पूरा दुनिया का तीर्थ यात्रा करो, मतलब एक तरह से कैसा हो गया, इम्पॉसिबल जैसा हो गया ना। अभी आपको बोलेंगे कि आप अभी आपको सर्टिफिकेट चाहिए RGNM का, जाओ पूरा वर्ल्ड में जाके सब नदियों में स्नान करके आओ, तो बोला अभी हो गया, डिग्री मिल गई हमको, क्योंकि जब तक सब स्नान नहीं होगा तब तक बुड्ढे हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस का भी करेंगे, नौकरी का भी करेंगे, मतलब ऐसा सोल्यूशन दे दिया जो इम्पॉसिबल है, ना कहने के बराबर हो गया वो, कि मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगी, इसके बदले में बोला कि जाओ सभी तीर्थों में जाके स्नान करके आओ। तो भगवान ने कहा, सुनिए मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, भगवान ने कहा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां आप मुझे स्नान करने को भेज रही हैं उन सब स्थानों को मैं यहां ही बुला लेता हूं। तो भगवान स्मरण करते हैं, सारे स्थान, सारे नदियां, सारे पर्वत, जितने पवित्र स्थान है ना, सब वहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सब व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति रूप में सेवा करते हैं, पर्वत रूप में, नदी रूप में सरल करते हैं। यस महाराज, यस भगवान, क्या आदेश है हमारे लिए। तो भगवान ना ऐसा पैर से खड्डा खोद देते हैं एक जगह पर, जहां पर उस बैल का भी पैर का निशान था, उसमें गड्ढा खोद देते हैं, बोलते सब लोग यहां जमा हो जाओ, अपना जल डालो और खुद भी प्रवेश करो। तो वहां पर एक विशाल कुंड बनता है, उसका नाम क्या है? श्याम कुंड। मतलब श्याम कुंड का मतलब क्या है? श्याम कुंड में दुनिया भर के जितने पवित्र स्थान है, नदियां, पर्वत, सरोवर, कुंड जितने भी है, वो सब वहां मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो फिर सब कृष्ण भगवान और सखा उसमें स्नान करते हैं। तो वो ये इधर का जो है ना, इस तरफ का टेढ़ा मेढ़ा, वो श्याम कुंड है। तो श्याम कुंड में स्नान हो करके अरिष्टासुर को मारकर जो तथाकथित पाप हुआ था उसको नष्ट करके भगवान जब गोपियों से मिलने को आते हैं, तो भगवान गोपियों से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। अभी कौन बोल रहे हैं? भगवान गोपियों को बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपने राक्षस के पक्ष में हमसे विवाद किया, उसका साइड लिया, जो पापी राक्षस था जिसका हमने वध किया, लेकिन आपने उसका साइड लिया, उसके पक्ष में हमसे विवाद किया और हमको दंड दिया आपने, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना होगा? आपको भी सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो अभी तो राधा रानी सोचती कैसे करेंगे अभी, तो कृष्ण बोलते हैं अगर आपकी इच्छा है तो मेरे कुंड में आप स्नान कर सकते हो, तो रेडीमेडी है ना, सबको बुला के रखा है मैंने उधर। लेकिन राधा रानी कुछ कम नहीं है, वो बोलती है जिसने आप में जिसमें आपने स्नान किया है ना, उसमें अरिष्टासुर को मारने वाला पाप आपने धोखे डाला है, समझ में आया ना, नदी में स्नान क्यों किया, कुंड में, वो पाप धोने के लिए ना, तो पाप धोके आपने उसमें जमा कर दिया है, तो ऐसे पाप वाले कुंड में हम नहीं स्नान करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो उसने सबने अपने कंगन है ना वो तोड़े और कंगन से खुदाई किया बाजू में, और वहां पर खुदाई करके गड्ढा बोदा, और वहां से जाकर मानसी गंगा तक लाइन लगाया। उस समय एक है मानसी गंगा नाम की जगह है, बहुत बड़ी सुंदर, आज के तारीख में वो कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर है। उस जगह से मानसी गंगा, जहां पर पानी है गंगा जी का, वहां तक लाइन लगाया, और वहां पर लास्ट में एक सखी जो है वो घड़ा भर के पानी दे रही है, वो ट्रांसफर करते 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 इधर डाल रहे हैं गड्ढे में। बहुत समय बीतता है, सब गोपियों के कपाल पर पसीना आता है, पसीने के बिंदु से परेशान हो जाती है, और सब लोग खड़े हैं, कृष्ण भगवान भी खड़े हैं, सखा भी खड़े हैं, और जितने देवता लोग आए थे ना वो नदी कुंड वाले देव देव वो भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो राजा रानी इतनी मेहनत क्यों करते हो, हमको आदेश दो, हम जमा हो जाएंगे उसके अंदर, नया कुंड बनेगा, उसमें क्या है? बोले नहीं, हम अपना बनाएंगे। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, अरे सखियों इतना क्यों मेहनत करते हो? वो बोल रहे हैं ना, अलग से बनाने को तैयार है ना, उनको हाँ तो बोल दो, कम से कम कितना पसीना बहाओगी? ऐसा पसीना बहाते रहोगी तो एक युग बीत जाएगा लेकिन आपका कुंड नहीं बनेगा, आप यहीं खड़े रह जाओगे। तो फिर महादयालु राधा रानी जो है कहते हाँ ठीक है, आप अपना जल डाल सकते हो। फिर सारे जो नदियाँ जितने पहाड़ सरोवर कुंड जो हैं वो अपना जल उसके आधे थोड़े से भरे हुए पानी में डाल देते हैं। उसी समय श्याम कुंड से एक छेद फट जाता है और ऐसा ग्रश जोरदार पानी का प्रवाह जो है यहां से वहां चला जाता है और वहां पर भी पानी गिर जाता है और दोनों ओवर फ्लो हो जाते हैं। तो उस कुंड का नाम क्या है? राधा कुंड। फिर राधा रानी ने उसमें स्नान किया है सखियों के साथ, और भगवान कृष्ण ने जो आशीर्वाद दिया है वो सब लोग सुनो ध्यान से और लिख भी लो। भगवान ने क्या वरदान दिया है? भगवान ने कहा है कि नंबर वन, ये राधा कुंड जो है ये राधा कुंड नहीं है, राधा रानी का द्रवीभूत प्रेम है, लिक्विड लव ऑफ राधा रानी, लिक्विफाइड लिक्विड फॉर्म ऑफ लव, ये प्रेम प्रेम का द्रव रूप है, राधा कुंड नहीं है। राधा कुंड यानी राधा रानी का प्रेम जल के रूप में यहां पर विराजमान है, ऐसे बता दिया। दूसरा बताया कि जो भी इस राधा कुंड में स्नान करेगा वो राधा जितनी प्रिय है उतना मुझे प्रिय हो जाएगा, ठीक है, नंबर दो। और तीसरा वरदान क्या दिया? जो भी इसमें स्नान करेगा वो राधा रानी का मेरे में कितना प्रेम है उतना प्रेम प्राप्त करेगा। एक तो मुझे प्यारा हो जाएगा जितनी राधा रानी प्यारी है, और एक उनका मुझ पर जितना प्रेम है उतना प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। और एक वरदान दिया कि सारे सृष्टि का, सारे क्रिएशन का सबसे सर्वोच्च स्थान राधा कुंड होगा, टॉपमोस्ट होली प्लेस ऑफ द होल यूनिवर्स, होल क्रिएशन राधा कुंड। तो राधा कुंड पे पहुंचना ये भी एक बड़े भाग्य की बात है, राधा कुंड के किनारे पहुंचना और वहां प्रार्थना करना यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, श्याम कुंड का दर्शन कीजिए, राधा कुंड का दर्शन कीजिए, गोवर्धन का दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमें इस जीवन में प्रेम दो, प्रेम और भक्ति दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।